हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। तभी अचानक तारापरी को एक ख्याल आया और उसने जैसे ही आग में अपना हाथ डाला, उसे अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। उसे समझने में देर नहीं लगी कि ये आग असली आग नहीं थी, बल्कि एक छलावा था। तारापरी समझ चुकी थी कि ये आग सिर्फ दिखावे के लिए थी, जबकि इसकी सच्चाई कुछ और ही थी। लेकिन फिर भी इतने भयानक आग के शोलों में जाना खतरे से खाली नहीं था। तारापरी के पर भी इसके अंदर जाकर जल सकते थे। तभी करिश्मा जी ने तारा से कहा, अब क्या करें, मेरे पास तो केवल आग के शोले बरसाने वाली शक्तियाँ हैं। तब तारापरी ने अपनी सासू माँ करिश्मा जी से कहा, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब देख लूँगी। तारापरी ने जल्दी से अपनी जादुई छड़ी निकाली और अपने माथे से लगाकर आंखें बंद कर कुछ पढ़ने लगी। करिश्मा जी बड़े ही ध्यान से अपनी बहू को देख रही थीं और मन ही मन में खुश हो रही थीं, क्योंकि तारापरी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी। ऐसा कहकर जल्दी ही तारापरी ने वहाँ पर अपनी जादुई छड़ी से एक खूबसूरत सी बरसात करनी शुरू कर दी। जैसे जैसे तारापरी का जादुई पानी उन आँख के शोलों पर पड़ रहा था, वैसे वैसे आँख के शोलों में से धुआं सा निकलता जा रहा था और धीरे धीरे सारी आग धुएं में पूरी तरह से पिघल गई और सब जल्दी ही खत्म हो गया। अब एक रास्ता साफ नजर आने लगा था। आग के शोले एक तरफ दीवार बनकर खड़े हो गए थे। उनके ठीक बीच में से एक रास्ता उन दोनों को नजर आने लगा था। इस तरह नया रास्ता देखकर करिश्मा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जैसे ही वो अपना पहला कदम उसके अंदर रखने जा रही थी, तभी अचानक उन्हें अपने पीछे किसी की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ किसी और की नहीं, बल्कि विक्रांत रंधावा की थी। विक्रांत रंधावा ने अपनी माँ के तप के द्वारा तारापरी के जादू को खत्म करवा दिया था, जिसकी बदौलत वो उनके ठीक पीछे आकर खड़ा हो गया था। तब विक्रांत रंधावा तारा की ओर देखते हुए कहा, मेरा तुम्हारे इस काम से कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम अमन के बाप को ढूंढना चाहती हो तो ढूंढ सकती हो, लेकिन इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। और मैं तो कहता हूँ, भला तुम्हें इन इंसानों और इन जिन्नतों के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत ही क्या है? क्यों बेकार में अपना और मेरा सबका वक्त बर्बाद कर रही हो? तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम सीधे मेरे पास आ जाओ, क्योंकि मेरा इन सब से कोई लेना देना नहीं है। मेरा अगर किसी से कोई लेना देना है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। पर लोग, जैसे ही विक्रांत रंधावा ने ये कहा, तारा की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। वो मन ही मन में गुस्से से विक्रांत को घूर रही थी और वहीं करिश्मा जी थोड़ी परेशान हो गई थीं। वहीं करिश्मा जी भी अब परेशान हो गई थीं, क्योंकि वो विक्रांत रंधावा की शक्ति को देख चुकी थीं और वो ये भी जान चुकी थीं कि विक्रांत रंधावा की शक्तियों से मुकाबला करना उनके बस की बात नहीं है। साथ ही साथ वो समझ चुकी थीं कि विक्रांत रंधावा पिछले जन्म का राजा विक्रम सिंह है, जो सिर्फ और सिर्फ तारापरी के लिए वहाँ आया है। अब तारापरी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि उसका जादू विक्रांत रंधावा तोड़ चुका था और दोबारा से इस जादू में कैद करना उसके लिए मुमकिन नहीं था। तारापरी अभी सोच ही रही थी कि तभी उसने विक्रांत से कहा, जब तक मैं अमन के पिता को ढूंढ कर नहीं ले आती, तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगी, समझे तुम? लेकिन तभी विक्रांत रंधावा ने तारा का हाथ पकड़ लिया और बोला, मैंने कहा ना, मुझे किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। तुम मेरे साथ चलोगी तो मतलब चलोगी। ऐसा कहकर वो तारा को लगभग घसीटता हुआ अपने साथ ले जाने लगा। करिश्मा जी एकदम से विक्रांत रंधावा के आगे आ गईं और कहने लगीं, तुम इस तरह से मेरी बहू को कहीं नहीं ले जा सकते हो, समझे तुम? भले ही तुम राजा विक्रम सिंह हो, लेकिन इस तरह से तुम्हें कोई हक नहीं है मेरी बहू को कहीं भी ले जाने का। और वैसे भी तारा मेरी जिम्मेदारी है। अगर तारा को तुम ले गए तो अपने बेटे को क्या जवाब दूंगी? मैं अपने बेटे को क्या बताऊंगी? नहीं, मैं तारा बहू को कहीं नहीं जाने दूंगी। करिश्मा जी एकदम से उनके सामने आकर खड़ी हो गई थीं। तभी विक्रांत रंधावा जोर से हंसने लगा और कहने लगा, ओ तो आप मुझे रोकेंगी? ऐसा कहकर विक्रांत ने एक फूंक सी मारी, जिससे करिश्मा जी थोड़ा सा दूर जा गिरीं। तभी विक्रांत रंधावा तारा को लगभग घसीटते हुए ले जाने लगा। तब तक तारापरी एक नॉर्मल इंसान के वेश में आ गई थी और वो विक्रांत रंधावा से खुद को छोड़ने की गुहार लगा रही थी। करिश्मा जी चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थीं। दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। मंजिल के इतने करीब आकर वे लोग पीछे नहीं हट सकते थे। कहीं न कहीं करिश्मा जी को लगने लगा था कि एक तरफ तो उसकी बहू, दूसरी तरफ उसके पति, जिन्हें वो पिछले 15 सालों से ढूंढते हुए आ रही थीं। करिश्मा जी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वहीं सर्प महाराज मुस्कुराने लगा, क्योंकि वो तारा और करिश्मा जी को आगे बढ़ने से रोकना चाहता था। अगर वे दोनों आगे बढ़ने से रुक जाती हैं तो वो श्राप से मुक्त हो सकता था। अब उनके पास पीछे हटने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। करिश्मा जी ने आगे बढ़ने के बजाय तारा की मदद करने का फैसला कर लिया था। आखिर वो उनकी बहू थी, उनकी जिम्मेदारी थी। अमन के एब्सेंट में उन्हें ही उसका ध्यान रखना था, तो किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। इसीलिए करिश्मा जी ने भी तारा का हाथ पकड़ लिया था। जैसे ही विक्रांत रंधावा ने ये देखा कि करिश्मा ने तारा का हाथ पकड़ लिया है, तो वो घूर कर उन्हें देखने लगा और उसकी आंखों में एकदम लालिमा छा गई। करिश्मा जी समझ चुकी थी कि वो गुस्से में है, लेकिन अब कोई और रास्ता नहीं था। तभी तारा परी ने एक बार फिर अपनी जादुई छड़ी का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन विक्रांत रंधावा ने इससे पहले कि तारा परी अपनी जादुई छड़ी का इस्तेमाल करती, उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया और कह दिया, अब तुम्हारा कोई जादू मुझ पर नहीं चलने वाला है, और वैसे भी अगर मुझ पर किसी तरह का कोई जादू चलाना है तो वो है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे जिस्म का जादू। तो अभी इसी वक्त तुम्हें मेरे साथ रिश्ता बनाना होगा, जो तुम्हारे पेट में इस जिन्नतों के वंशज की जान ले लेगा, और इसकी जान तभी जाएगी जब मैं तुम्हारे साथ जिस्मानी रिश्ता बना लूँगा। तारा की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। विक्रांत रंधावा की इस तरह की बातें सुनकर उसका खून खौलने लगा था। तारा परी का गुस्से के मारे बहुत बुरा हाल था। वो किसी भी कीमत पर विक्रांत को जीतने नहीं देना चाहती थी। हालांकि उसका मुख्य मकसद पृथ्वी पर आने के पीछे सिर्फ और सिर्फ राक्षस को हराने का था, लेकिन अब पृथ्वी पर आने के बाद उसके साथ कुछ रिश्ते भी जुड़ चुके थे। वो उन रिश्तों को भी निभाना चाहती थी, और इन्हीं सब चक्करों में आज वो विक्रांत रंधावा के हाथ लग चुकी थी। लेकिन विक्रांत ने उसके बच्चे के बारे में बात करके तारा के अंदर खून की आग जला दी थी, और उसे विक्रांत को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था।
वहीं विक्रांत बड़ी बुरी तरह से घसीटते हुए तारा को लगभग अपने साथ ले जा रहा था। करिश्मा जी जिन रूप में पाकर भी उसे नहीं रोक पा रही थीं, क्योंकि विक्रांत रंधावा काफी ज्यादा शक्तिशाली था। ऊपर से उसके पिछले जन्म की माँ का हाथ भी उसके सर पर था, तो इसीलिए वो अपने आप को कुछ अमर समझने लगा था। अभी वो तारा परी को शिव मंदिर के बाहर लेकर आया ही था और उसे पुल पार करने के लिए ले जाने लगा था। करिश्मा जी केवल नम आंखों से ये देख रही थीं। उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो अब विक्रांत रंधावा का मुकाबला कर सकें। करिश्मा जी ये सब देखते हुए धरती पर घुटनों के बल बैठ गई थीं और उन्हें बहुत ज्यादा रोना आ रहा था। एक तो उनकी बहू उनकी आंखों के सामने जा रही थी, ऊपर से अपने पति को ढूंढने के इतने करीब आकर उन्हें यहाँ से मायूस होकर लौटना पड़ रहा था। रह रहकर उन्हें बहुत ज्यादा रोना आने लगा था। तभी अचानक वहाँ की पृथ्वी में अजीब तरह का कंपन सा होने लगा और भूकंप सा आ गया। उसे भूकंप को तारा और करिश्मा दोनों ने अच्छी तरह से महसूस किया था। उन्होंने अपने आसपास अच्छी तरह से देखा था, लेकिन उन्हें दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दिया था। और तभी अचानक, इससे पहले कि कोई समझ पाता, आग का एक छोटा सा गोला विक्रांत रंधावा के हाथ पर आकर गिर गया, जिस हाथ से उसने तारा को पकड़ रखा था। जैसे ही विक्रांत के हाथ पर वो आग का गोला गिरा, वो दर्द के मारे कराह उठा और तुरंत ही उसने तारा का हाथ छोड़ दिया। तारा का हाथ छूटने पर करिश्मा जी ने तारा को तुरंत अपने पास खींच लिया और गले से लगा लिया, और वे दोनों हैरानी से अपने आसपास देखने लगी थीं, लेकिन उन्हें कहीं भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वहीं विक्रांत रंधावा का भी गुस्से के मारे बुरा हाल हो गया था, और वो जोर से चिल्लाकर बोला, कौन है? वो हिम्मत है तो मेरे सामने आ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी तारा का हाथ मेरे हाथ से छुड़ाने की? सामने आ, मैं कहता हूँ, सामने आ। अगर तू अपनी भलाई चाहता है तो सामने आ। विक्रांत जोरों से चिल्लाना और धमकी देना शुरू कर दिया था। तभी अचानक हल्का हल्का सा धुआं वहां पर दिखाई देने लगा, और उस धुएं में से जो चेहरा सामने आया वो कोई और नहीं बल्कि हमारी कहानी का हीरो यानी कि शक्तिशाली जिन अनमन का था। अमन अपनी तपस्या पूरी होने से थोड़ा सा पहले ही वहां आ गया था, क्योंकि उसके दादाजी महाराज ये भांप चुके थे कि तारा और करिश्मा की जान को खतरा है। इसीलिए वे ज्यादा देर नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अमन से बाहर आने के लिए कह दिया था। वैसे भी अमन इतनी शक्ति हासिल कर ही चुका था कि वो विक्रांत रंधावा का मुकाबला कर सके। जैसे ही अमन वहां आया, तारा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। वहीं करिश्मा जी भी बहुत ज्यादा खुश हो गई थीं। तारा जल्दी से करिश्मा जी का हाथ छुड़ाकर भागकर अमन के गले से लग गई थी। अमन ने भी अपनी दोनों बाहों में तारा को पूरी तरह से थाम लिया था। उनके बीच में से हवा भी पास नहीं हो सकती थी, वे दोनों इतने करीब थे। जैसे ही विक्रांत ने ये देखा, वो गुस्से के मारे उसका बुरा हाल हो गया था और वो घूरकर अमन और तारा को देखने लगा था, जो उस वक्त काफी ज्यादा करीब थे। और तब तारा अपनी हैरत को छुपा नहीं पाई और बोली, आप कैसे आए हैं? आप कैसे पता चला कि हम यहाँ पर हैं? तब अमन ने तारा के दोनों गालों को अपने हाथों में भरते हुए कहा, तुम्हें मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ मेरी बीवी कब कहाँ हो सकती है। ऐसा कहकर अमन मुस्कुराने लगा और एक प्यारा सा किस उसने तारा के माथे पर कर दिया। तभी अमन ने तारा को अपने पीछे खड़ा कर दिया और तब तक करिश्मा जी ने भी अपने बेटे को आकर गले से लगा लिया और बोली, मेरे बच्चे, तू नहीं समझ सकता मैं तुझे यहाँ पर देखकर कितनी ज्यादा खुश हूँ। तभी विक्रांत रंधावा ताली बजाते हुए वहाँ आया और बोला, तुम लोगों का भारत मिलाप खत्म हो गया है, तो अब हम आगे कुछ बात कर लेते हैं। विक्रांत रंधावा की इस तरह की बात सुनकर अमन उसे घूर कर ले गया। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि विक्रांत ही वो राक्षस निकलेगा जो उसके तारा के लिए वहां आया था, और विक्रांत रंधावा से ही उसे झगड़ा करना पड़ेगा। अमन को रह रहकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और अचानक से अमन ने अपने हाथ बढ़ाकर विक्रांत के गले को पकड़ लिया। अमन के अंदर काफी ज्यादा पावर थी, तो वो विक्रांत रंधावा उसके आगे फीका पड़ चुका था। एक हाथ से गर्दन पकड़ने के बाद अमन ने दूसरे हाथ से विक्रांत रंधावा के मुंह पर लगातार 3-4 पंच मार दिए। तभी एकाएक विक्रांत रंधावा अपने राक्षस रूप में आने लगा, लेकिन अमन उसके राक्षस रूप को देखकर जरा सा भी हिचकिचाया नहीं। नहीं, उसके मन में किसी तरह का कोई एहसास नहीं हुआ। जल्दी ही अमन ने अपना तिलिस्मी पत्थर को निकाल लिया और विक्रांत पर उस पत्थर से हमला कर दिया। तिलिस्मी पत्थर अब पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो चुका था, क्योंकि अमन के दादा जिन महाराज ने अमन को नया जिन महाराज बना दिया था, जिसकी वजह से उसका तिलिस्म पत्थर पूरी तरह से जागृत हो चुका था और सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन चुका था। तपस्या के बीच में ही अमन के दादा जिन महाराज को करिश्मा और तारा के मुसीबत में होने का एहसास हो गया था। इसीलिए जिन महाराज ने उसे कहा था, सबसे पहले तुम्हें इस वक्त जाकर करिश्मा और तारा बेटी को बचाना चाहिए, उसके बाद तुम आकर अपनी बाकी की तपस्या पूरी कर सकते हो, और तब तक मैं तुम्हें जिन महाराज की सारी शक्तियाँ देता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने अपने अंदर की सारी शक्तियाँ अमन को दे दी थीं। साथ ही साथ तपस्या हासिल करने से अमन के अंदर भी अब काफी सारी शक्ति आ गई थी। सबसे पहले अमन ने तपस्या से मुक्त होकर अपने दादाजी महाराज को छुड़ाया था, फिर उनका आशीर्वाद लेकर वो तारा और करिश्मा के पास आया था। लेकिन तभी